हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जॉन ने ज़ोया के साथ जाने से मना कर दिया था, लेकिन ज़ोया अपना इरादा बना चुकी थी उस महल जैसे घर में जाने के लिए। वो ये भी देखना चाहती थी कि आखिर कौन वो इंसान है जिससे सब लोग इतना डरते हैं। सो उसने जॉन को वहीं बाहर खड़ा करके खुद अंदर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। ज़ोया ने जॉन से साफ साफ कह दिया था कि वो खुदा के सिवा किसी और से नहीं डरती, सो वो बड़ी ही हिम्मत के साथ अबीर राठौर के मैंशन में अंदर चली गई थी। वहीं बाहर खड़ा जॉन मन ही मन उसकी हिम्मत की दाद दे रहा था और कह रहा था, आप जैसी शेर दिल लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। वहीं दूसरी ओर अरमान राजवीर को ज़ोया के मिलने की खबर दे रहा था और बोल रहा था, मुझे ज़ोया को लेने के लिए अमेरिका खुद ही जाना होगा, इतने में चाहता हूँ कि मेरा सारा बिजनेस तुम संभालो। ज़ोया की खबर मिलते ही राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी और वो रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगा था। उसे मुस्कुराता देख अरमान कुछ उदासी से भर गया था, लेकिन केवल एक पल के लिए। अगले ही पल वो सामान्य होकर बात कर रहा था। जैसे ही अरमान ने राजवीर को काम संभालने को कहा, राजवीर को ऐसा लगा मानो किसी ने बहुत बड़ा बोझ उसके सिर पर रख दिया हो। राजवीर का चेहरा जहां ज़ोया के मिलने की खुशी से चमक उठा था, वहीं काम संभालने का सुनकर उदासी से भर गया था। राजवीर का तो खुद का इतना बड़ा बिजनेस था जो वो खुद भी नहीं जानता था। वो तो केवल मुनाफे के आए हुए पैसों से ऐश करता था। उसने अपने बिजनेस की संभाल के लिए खुद काफी सारे बंदे रखे हुए थे। उसे तो केवल एक ही काम भाता था और वो था पुलिस का काम। उसे बचपन से ही जासूसी करना पसंद था। बिजनेस वगैरह में उसने कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं था। अब जब अरमान ने उसे अपना काम संभालने की पेशकश की तो वो काफी ऊब सा गया और बोला, पर अरमान, ज़ोया का प्रॉपर एड्रेस थोड़े ना मिला है और अमेरिका कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं कि तुम जाओगे और जाते ही तुम्हें ज़ोया मिल जाएगी। न जाने उसे ढूंढने में वहाँ कितना टाइम लगने वाला है। इतने में क्या तुम वहीं पड़े रहोगे? मैं तुम्हारा काम तो संभाल लूँगा, लेकिन तुम्हारे जितने अच्छे से नहीं संभाल पाऊँगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, पहले अपने कुछ आदमी उसे ढूंढने के लिए वहाँ भेजो और जब वो मिल जाए तब फिर तुम वहाँ जाकर उसे लेकर आओ। अरमान, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन इस काम के लिए मुझे कोई ढंग का आदमी ही नहीं मिल रहा है। तेजा को मैं भेज नहीं सकता हूँ क्योंकि उसके बिना यहाँ का काम कोई नहीं संभाल पाएगा। समझ नहीं आ रहा है मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। अरमान ने गुस्से में अपना हाथ जोर से टेबल पर दे मारा। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, मैं जाऊंगा ज़ोया को लेने। जैसे ही ये आवाज़ आई उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अरहम एक डंडे का सहारा लिए वहाँ खड़ा था और वो कह रहा था कि मैं जाऊंगा ज़ोया को लेने के लिए। अरमान इसी कश्मकश में था कि ज़ोया को लेने के लिए किसे भेजूं, तब पीछे से एक आवाज़ आई, मैं जाऊंगा ज़ोया को लेने। अरमान को ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी और वो बिजली की सी तेजी से मुड़ा। उसने देखा अरहम पीछे खड़ा था। अपने भाई को सही सलामत अपने पैरों में देखकर अरमान को यकीन ही नहीं हुआ और वो भागकर उसके गले लग गया। और तब तक मेहर भी वहां आ गई और वो भी उन दोनों के गले लग गई। उस वक्त उन तीनों की ही आंखों से आंसू बह निकले थे। वहीं राजवीर मुंह बिचकाकर उन तीनों को देख रहा था। उनके फैमिली ड्रामे में उसका कोई लेना देना नहीं था, वो तो केवल अपने फायदे के लिए ही उन लोगों के साथ था। कुछ देर बाद वे तीनों एक दूसरे से अलग हुए। तब अरहम ने कहा, मैं ठीक हूँ भाई और आप मत रोएं प्लीज। ऐसा कहकर अरहम मेहर की आंखों में आए आंसुओं को पोंछने लगा। तब राजवीर मन ही मन सोचने लगा, लगता है अब एक्टिंग का समय आ गया है। ये सोचकर वो मेहर के पास गया और उसके आंसू पोंछे और फिर उसे गले लगाते हुए बोला, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बीवी की आंखों में कोई भी आंसू आए। मेहर कड़ी कड़ी नजरों से राजवीर को देख रही थी। अब वो राजवीर की चाल, उसकी एक्टिंग, सब कुछ अच्छे से समझने लगी थी। तभी अरहम बोला, अरमान भाई, मैं जाऊंगा ज़ोया को लेने अमेरिका। तब अरमान बोला, लेकिन भाई तेरी तबीयत? तब अरहम बोला, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा चलने में परेशानी है, लेकिन बहुत जल्द वो भी ठीक हो जाएगी। आप दो दिन बाद मेरा वहाँ जाने का सारा अरेंजमेंट कर दो। तब तक ये दो दिन में हॉस्पिटल में अपने सारे चेकअप और जो भी मेरा काम है वो सब खत्म कर लेता हूँ। अरमान के सर से बोझ उतर गया था। उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी थी और वो खुशी के मारे एक बार फिर अपने भाई के गले लग गया था, बिना ये जाने कि उसका भाई अब बदल चुका था। वहीं दूसरी ओर जोया राठौर मैंशन में अंदर चली गई थी और वो आसपास की खूबसूरती में इतना मग्न हो गई थी कि उसे होश ही नहीं रहा कि वो कहाँ है। अभी जोया चारों ओर देख ही रही थी कि तभी एक मुलाजिम वहाँ आई। वो कोई और नहीं बल्कि अभी राठौर का खाना बनाने वाली औरत थी। उसने जोया को हैरानी से ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा, आप कौन हैं मैम? उस मुलाजिम की नज़रें जोया पर से हट ही नहीं रही थीं, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी जो किसी स्टेट की प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। जोया के लिए उस मुलाजिम का लहजा अपने आप ही नर्म हो चुका था, वरना अभी राठौर की मुलाजिम काफ़ी कठोर दिल की रहती हैं सभी। तभी जोया ने बड़े आदर के साथ जवाब दिया, मैं इस घर के मालिक से मिलना चाहती हूँ। वो मुलाजिम जोया को अपनी आंखें बड़ी कर देखने लगी, क्योंकि पहली बार कोई सामने से अभी राठौर से मिलने आया था। उसने कहा, क्या काम है आपको साहब से? जोया जी, मैं उनसे मिलकर उन्हें ही बताऊंगी, आप प्लीज उन्हें बुला लीजिए। माफ़ी चाहूंगी मैडम, लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने मालिक को डिस्टर्ब कर सकूं। जोया उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और बोली, लेकिन अगर आप उन्हें नहीं बुलाएंगी तो मैं उनसे कैसे मिलूंगी और जो कहने आई हूँ वो कैसे कहूंगी? तब मुलाजिम बोली, मैडम वो सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए जो सुनहरी सा दरवाज़ा आपको दिख रहा है ना, वो हमारे साहब का कमरा है। आप वहाँ चली जाइए और बाहर से ही पूछ लीजिए कि वो आपसे मिलना चाहते हैं या नहीं। जोया हैरानी से ऊपर की ओर देखने लगी। सामने ही बड़ी ही खूबसूरत सी सीढ़ियाँ गोल घेरे में बनी हुई ऊपर गई हुई थीं। उन्हीं के बराबर में बड़ा ही प्यारा सा दरवाज़ा था जो शायद सोने के तारों से बना था, जिसमें सुनहरी सी झलक मार रही थी। जोया ने कहा, क्या आप मेरे साथ चल सकती हो और आप ही उनसे पूछ लीजिए कि कोई उनसे मिलने आया है? जोया की जगह कोई और होता तो वो मुलाजिम उसे साफ साफ मना कर देती, लेकिन जोया को मासूम सी शक्ल देखकर उसका दिल नहीं करा उसे मना करने को। उसने कहा, ठीक है, आप चलिए मेरे साथ। जोया धीरे धीरे अभी राठौर के कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी और उसकी पायल के घुंघरू की आवाज़ धीरे धीरे पूरे मैंशन में गूंजने लगी थी। वहीं अबीर के कानों में भी वो आवाज़ पड़ी। वो उठ बैठा। जोया को याद करते करते उसकी आँख लग गई थी और अब अचानक पायल की खनखन से उसकी आँख खुल गई थी, जो उसे काफ़ी ज़्यादा नागवार लगा था। लेकिन वो अपने बिस्तर से नहीं उठा था, बस वहीं पड़ा रहा और जोया का दिया जख्म देखने लगा जो भरने लगा था। जख्म को भरता हुआ देख अबीर को काफ़ी बुरा लगा था और जैसे ही उसने ये सोचा कि क्यों ना इस जख्म को वापस से कुरेद कर हरा कर दिया जाए, और वो किसी चाकू से उस जख्म को कुरेदने चाह ही रहा था कि तभी उसे उसकी मुलाजिम जो खाना बनाती है उसकी आवाज़ सुनाई दी। उसने बाहर से ही खड़े खड़े बोला, साहब जी आपसे मिलने कोई आया है। ये सुनते ही अबीर राठौड़ का पारा हाई हो गया था, क्योंकि वो तो जोया का दिया जख्म कुरेदने जा रहा था और इस बीच किसी का आना उसे बेहद नागवार लगा था और वो गुस्से से चिल्ला उठा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जोया को ये सुनकर काफ़ी बुरा लगा था। अबीर की आवाज़ में सोने की वजह से थोड़ा भारीपन आ गया था, जिसकी वजह से जोया उसकी आवाज़ नहीं पहचान पाई थी। उल्टा उसे उस नौकरानी के लिए बुरा लग रहा था जिसके कारण उसकी डांट पड़ गई थी। डांट पड़ते ही वो नौकरानी वहाँ से भाग खड़ी हुई थी। तब जोया बोली, सर इसमें आपकी मुलाजिम की कोई गलती नहीं थी, वो तो मैंने ही उनसे आपसे मिलने के लिए बोला था। वो एक्चुअली सर मेरे भाई की आज हल्दी का फंक्शन है आपके सामने वाले अपार्टमेंट में, उसी के पार्क में हमने हल्दी का फंक्शन रखा है, पूरी बिल्डिंग के लोग इनवाइटेड थे, बस केवल आपका ही ये एक घर बचा हुआ था, सो बस मैं उसी का बुलावा देने यहाँ आई थी, आई एम सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो तो। जोया ने एक ही सांस में अपनी बात खत्म की थी और अबीर जोया की आवाज़ सुनकर कुछ बेचैन सा हो उठा था। वो ये तो नहीं पहचान पाया था कि ये जोया की आवाज़ है, बस ये सोच जरूर रहा था कि उसने ये आवाज़ कहीं सुनी है। तब अबीर ने अपनी उसी भारी आवाज़ में कहा, ठीक है तुम जाओ यहाँ से, यहाँ कोई नहीं है फालतू जो तुम्हारे फंक्शन में आए, समझी? तुम मेरे पास इन फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। जैसे ही जोया ने ये सुना उसे गुस्सा आ गया और वो बोली, अगर आपको नहीं आना है तो मत आइए, पर ऐसे मेरे भाई की खुशियों के फंक्शन को फालतू कहने का आपका कोई हक नहीं है, समझे आप? और मेरा सिर्फ आपको बुलाने का फर्ज था, अब आपकी मर्जी है, आपको आना है आइए, वरना भाड़ में जाए। ऐसा कहकर जोया अबीर के दरवाजे से ही वापस जाने के लिए पलट गई। जोया का इस तरह से जवाब देना अबीर को अंदर तक तपा गया था और वो न चाहते हुए भी बेड से उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे से बाहर निकला और उसने देखा येलो कलर के लहंगे में एक लड़की सीढ़ियों की तरफ जा रही है। अबीर तेजी से उसके पास गया और जैसे ही जोया अपना पहला कदम सीढ़ी पर रखने वाली थी, अबीर ने जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और जोया अपने आप को संभाल नहीं पाई, वो सीधा अबीर राठौड़ के सीने से जा लगी थी।